Ich muss auch gehen. Alhamdulillah, wa kafa wa salam. Wa bihillazi nastafa. Amma ba'd, wa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. بس پاس میں ہم سورہ انعام کی بنا کرتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 3. یہ ہماری ریفرنس بک ہے اور جو آیت ابھی تلاوت کی گئی آیت نمبر 122 ہے. اس کا ترجمہ تو غالباً ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے اور خلاصہ تفسیر بھی اس کا پڑھ لیا تھا, لیکن معارف و مسائل شروع کرنے سے پہلے ظاہر ان آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سے اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا چاہیے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے, بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں, روشنی ہم نے اس کو دی کہ وہ اس کو لیے پھرتا ہے لوگوں میں. برابر ہو سکتا ہے, یعنی ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہم نے اس کو روشنی بھی دے دی اور وہ ہر وقت وہ روشنی اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے. کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں وہاں سے نکل نہیں سکتا. یعنی دو شخص ہیں, انسان ہی ہیں, اللہ کے بندے ہی ہیں, آدم کی اولاد ہی ہیں, لیکن دونوں کی حالت جو ہے وہ مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے سب کو بنایا اور سب کچھ بنایا تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی حالت الگ ہے, اس کی حالت الگ ہے, اور اس کا مقام بھی حالت کے حساب سے مقام بھی الگ ہے اور اس کا مقام بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, وہ روشنیوں میں ہے, روشنیوں کے ساتھ ہے, اور یہ اندھیروں میں ہے. وہ آزاد ہے, وہ آزاد ہے, یمشی بھی فی الناس, یعنی وہ چلتا پھرتا ہے انسانوں میں. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس دنیا کی پہچان کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں, تو مطلب یہ کہ انسانوں میں چلنے پھرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے, کہیں پہ پھنسا ہوا نہیں ہے, کہیں پہ امپریزنڈ نہیں ہے, رائٹ. جبکہ دوسرا شخص جو کہ اندھیروں میں ہے نا, یہ نکل ہی نہیں پا رہا. تو نکل ہی نہیں پا رہا کا لفظ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ لفظ تو ہم قیدی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, رائٹ, کہ وہ قید میں سے نکل ہی نہیں پا رہا. تو مطلب یہ کہ یہ آزاد نہیں ہے, یہ آزاد نہیں ہے, بلکہ وہ آزاد ہے جس کے پاس روشنی ہے, اور جو اندھیرے میں ہے وہ آزاد نہیں ہے. تو آزاد نہ ہونے والے شخص کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے, یہ آپ بتا دیں. کہ جو آزاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ الفاظ سے بات کی حقیقت زیادہ کھلتی ہے نا, اگر الفاظ ریلیونٹ استعمال کیے جائیں, رائٹ, تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو بھائی جو آزاد نہیں ہوتا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اگزیکٹلی غلام, رائٹ, غلام, قیدی. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ غلام اور قیدی کے لفظ سے جو ہے نا, یہ پھر ہمیں تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے. ذرا ذرا الجھن ہو نا, ہمیں بھی ذرا پیٹ میں درد ہو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی ذرا تکلیف ہو اس سچویشن کو سمجھ کے کہ بھئی جو اندھیرے میں ہے وہ تو قیدی ہے, جو اندھیرے میں ہے وہ تو غلام ہے, رائٹ. वो तो पाबंद है, ठीक है, जबकि जो रोशनियों में है वो पाबंद नहीं है। कौन ये कह रहा है? ये हमारा परवरदिगार कह रहा है, ठीक है, ये वो कह रहा है जो कि हर चीज के ऊपर कुदरत कुदरत रखता है। ये कोई आम एनालिस्ट नहीं कह रहा, ये तज्जिया निगार कोई शख्स नहीं कह रहा, ये कोई टॉक शो का जो है वो जो रोएबजा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि रोएबजा वो बात क्या करेंगे इंसानों के मामलात में, जिनके पास इल्म नहीं होगा लेकिन आकर के बातें किया करेंगे खाली। तो जो टॉक शो के होस्ट होते हैं या करके तज्जिये करते हैं ना, हम इनकी तज्जिये को बड़ी अहमियत देते हैं कि हाँ भाई ये टीवी पे बैठे हुए हैं, टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि दे मस्ट बी समथिंग सिग्निफिकेंट, राइट, इनकी कोई अहमियत होगी, जभी तो इनको टीवी पे लाके बिठाया गया है। तो इनकी बात को हम बड़े गौर से सुनते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं कि उसने उस टॉक शो ने उस टॉक शो होस्ट ने ये कहा था और उस एनालिस्ट ने ये कहा था, क्यों क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि हमारे निगाह में इनकी अहमियत होती है ना, ठीक है, कि भाई टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है जो ये कह रहा है, अवमन का न मैतन फाहिए ना हुआ जाल ना लहू नूर यमशी, ये कौन है भाई? ये कोई टॉक शो होस्ट है? ये कोई एनालिस्ट है? ये कोई रोएबजा है? ये कोई हमारे जैसे कि अपने छोटी सी ना होने वाली इल्म की बुनियाद पर जो है कोई तज्जिया करने वाली, ये कोई ऐसी औरत है? ये कौन है भाई जो ये बातें कर रहा है? क्या इसको हम खुदा कहते हैं? क्या इसको हम अल्लाह कहते हैं? क्या इसको हम वो कहते हैं कि जिसकी हम इबादत करते हैं? अभी फजर की नमाज पढ़ी थी, माशाल्लाह सारी दीनदार खवातीन बैठी हुई हैं, सबने फजर पढ़ी होगी, जिस जिसको पढ़नी थी उसने पढ़ी होगी, ठीक है ना। हो सकता है कुछ जिक्र अस्कार भी क्यों, किसका जिक्र किया हो, इसी का क्या हो, इसका जिक्र किया था जो ये बातें कह रहा है, या किसी और का जिक्र किया था, किसी और की तस्बीह फेरी थी, किसी और के सामने फजर की नमाज में सजदा किया था, इसके सामने किया था? तो ये कौन है भाई जिसके सामने सजदा करके आई है अभी? वो ये कहता है कि रोशनी वाला आजाद है और अंधेरों वाला गुलाम है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है और वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं बोलता, तो फिर जो बोलता है कि जिसके पास रोशनी है वो गुलाम है और जो अंधेरों में है वो आजाद है, तो फिर हम उसकी बात क्यों मानते हैं? हम उसकी बात को अहमियत क्यों देते हैं, राइट, कि जो अंधेरों वाले को, यानी जो काफिर है जिसके पास ये रूहानी हिदायत नहीं है। जुमे का दर्स शायद कुछ लोगों ने सुना हो, हमने अनाउंस भी नहीं किया था उसको, लेकिन मिक्सएलआर के ऊपर जो हमारे दर्स जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से शायद कुछ लोगों ने सुन भी लिए थे। बहरहाल उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी इंशाल्लाह, तैयार हो चुकी है, बस मेरे ख्याल में आज पोस्ट भी हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग से भी सुन लीजिएगा, ठीक है, सुना जा सकता है कि भाई ये जो बात हो रही है ये तो रूहानी हिदायत, जिसकी रूह को हिदायत मिल गई, ये उसकी बात हो रही है, जिसकी रूह को हिदायत मिल गई वो आजाद है और जिसकी रूह को हिदायत नहीं मिली वो कैदी है, वो गुलाम है, राइट। लेकिन क्या हम इस बात को तस्लीम करते हैं? क्या हम इस बात को मानते हैं? या हम मीडिया के प्रोपेगेंडा को मानते हैं? मीडिया यानी कुफर का, मीडिया इज इक्वल टू कुफर, काफिर, हम उसके प्रोपेगेंडा को मानते हैं और हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली बातों को मानते हैं कि काफिर वो आजाद है, वो कहते हैं कि काफिर आजाद है, वो अपनी मर्जी से जहां चाहता है जाता है, वो अपनी मर्जी से जो काम करना चाहता है करता है, ठीक है। और जो ईमान वाला है, जो हिदायत वाला है, उसको कहते हैं कि ये जो है ना ये दकियानूस है, ये जहनी गुलाम है, ये कैदी है। तो हमने किसके सामने सजदा किया था फिर? हमने फजर की नमाज में, आपने फजर की नमाज में किसके सामने सजदा किया था? यूरोप के सामने सजदा किया था, अमेरिका के सामने सजदा किया था, चाइना के सामने सजदा किया था, मूदी मूजी के सामने सजदा किया था, हिंदू के सामने सजदा किया था, या इस कुरान वाले के सामने सजदा किया था। ठीक है, तो जिसके सामने सजदा करते हैं उसकी बात को हम सच्चा नहीं मानते, उसको झूठा मानते हैं। ठीक है, तो फिर इस सजदे का क्या फायदा हुआ, इस सजदे का क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो फिर हमारा दिल तो सजदा यूरोप अमेरिका को कर रहा है ना, हमारा दिल जो है वो इस परवरदिगार को सजदा नहीं कर रहा, इस परवरदिगार को सिर्फ हमारी मसल सजदा कर रही है, हमारी बोन सजदा कर रही है, लेकिन हमारा दिल इसको सजदा नहीं कर रहा। हमारा दिल तो कर रहा है स्कूल कॉलेज के अंदर जो पट्टी पढ़ाई जा रही होती है, ठीक है, जिन्होंने वो निसाब बनाया, जिन्होंने वो नजरियात किताबों में लिखे और टीचर्स को पढ़ाए कि तुम जाके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, हम उनको, हमारा दिल उनको सजदा कर रहा है, हमारा दिल उनको सजदा कर रहा है। ठीक है, हमारा दिल अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा, हमारा दिल तो उनको सजदा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उनकी बात को सच मानते हैं। राइट, तो ये हमारी हकीकत है, तौबा कर लेना चाहिए, इससे बहुत आसान काम है। इस जो हमारा कुफर वाली है, जो हमारी हकीकत यानी कि कुफर, इस कुफर से हमें तौबा कर लेना चाहिए, ईमान में दाखिल हो जाना चाहिए, मुसलमान बन जाना चाहिए। ठीक है, इस कुरान मजीद को मानने वालों में शामिल हो जाना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, राइट? तो आगे फरमाया, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून, कि ऐसे ही मुज़य्यन कर दिए गए काफिरों के लिए वो अमल जो कि वो करते हैं। तो हमारे जो सजदे हैं ना, फजर की नमाज, ये हमारे लिए मुज़य्यन कर दी गई, हालांकि वो मुज़य्यन करने वाली चीज नहीं थी, वो कोई हसीन चीज नहीं थी। हमारी फजर की नमाज हसीन नहीं थी। क्यों हसीन नहीं थी? इसलिए कि उस फजर की नमाज में हमारा दिल अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा था, हमारा दिल जो है वो कुफर ही को के सामने मुस्तकिल सर बसजूद है। हमारा दिल मुस्तकिल कुफर के सामने सजदे की हालत में है। फजर में हमने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ अपने जिस्म को सजदा करवाया था। ठीक है, किसी वजह से, अम्मी भी करती हैं, अबू भी करते हैं, घर में दूसरे लोग भी करते हैं, इस वजह से मुझे भी करना चाहिए, बस खलास। इसलिए नहीं कि मैं जिसको सजदा कर रही हूं वो सच्चा है और वो सच बात करता है, वो पक्की बात करता है, मैं इसलिए उसको सजदा कर रही हूं और मैं उसी को सजदा करती हूं। मेरा जिस्म भी उसी को सजदा करता है और मेरा दिल उसी को सजदा करता है, और जो उसके खिलाफ बात करता है मेरा दिल उसको सजदा नहीं करेगा, हरगिज हरगिज मेरा दिल उसको सजदा नहीं कर सकता। क्या ये हमारी नमाज की कैफियत थी? अगर नहीं थी तो हम इस आयत का मिसदाक हैं, कदालिक ज़ुय्यिना लिलकाफिरीना मा कानू यअमलून, कि शैतान ने हमारी फजर की नमाज को मुज़य्यन बना के पेश कर दिया, हालांकि वो मुज़य्यन थी नहीं, वो तो गंदी थी, वो तो गंदी थी, वो तो बदबूदार थी। राइट, उसमें से तो ताफुन उठ रहा था, हमारी फजर की नमाज में से तो ताफुन उठ रहा था, बदबू उठ रही थी, लेकिन हम मुतमईन है उसके ऊपर। तो हम कैसे मुतमईन हैं? क्योंकि हम काफिर हैं, ठीक है, और हमारे आमाल को शैतान ने मुजय्यन किया है अल्लाह के हुक्म पर। क्यों अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया शैतान को कि इनकी नमाजों को इनके सामने मुजय्यन कर दो? इसलिए कि हमने अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया था, हमारा दिल अल्लाह के सामने सजदा नहीं कर रहा था। और अल्लाह गैरतमंद है, अल्लाह ताला जब देखता है कि मुनाफिकत कर रहा है, ऊपर से जो है वो दिखा रहा है कि मुझे सजदा कर रहा है, लेकिन अंदर से ये मुझे सजदा नहीं कर रहा, ये तो मेरे दुश्मनों को सजदा कर रहा है, अल्लाह की गैरत जोश में आती है और अल्लाह ताला फिर शैतान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। और फिर वो शैतान क्या करता है, जुय्यना व जय्यना लहुम शैतानु, शैतान इनके अमाल को फिर मुजयन कर देता है और ये मुतमईन हो जाते हैं कि यार मैं तो जबरदस्त, आई एम डन, मैंने तो सजदा किया है, मैं तो मुसलमान हूं और मेरे लिए तो जन्नत तैयार है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हालांकि ऐसा हकीकत में नहीं है, ठीक है? तो हकीकत तो फिर आईना देखने से नजर आती है, ठीक है? तब पता चलता है कि जी असल क्या है और धोखा क्या है। तो ये तो जी हो गया था तर्जुमा, और फिर उसके बाद मारफ मसाइल शुरू करते हैं कि जी पिछली आयतों में पहले इसका जिक्र आया था कि मुखालिफीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के खुले खुले मोजजात देखने के बावजूद जिद और हठधर्मी से नए नए मोजजात का मुतालबा करते हैं। इसके बाद कुरान ने बताया कि अगर ये लोग वाकई हक तलब होते तो जो मोजजात उनकी आंखों के सामने आ चुके हैं वो उनको राह हक दिखाने के लिए काफी से भी ज्यादा थे। फिर उन मोजजात का बयान आया था, ठीक है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास कौन सा मोजजा आया? बहुत सारे मोजजे आए, लेकिन जो डोमिनेंट मोजजा था, राइट, जो नबी अलैहिस्सलाम का अगर कहा जाए असल मोजजा था, मोजजा था, वो कौन सा था? असल मुआजजा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सा आया था? जी आपसे पूछ लेते हैं ताकि कोई शक न रह जाए ना। कुरान पाक, ठीक है? तो ये कुरान करीम जो मुआजजा आया था नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या ये मुआजजा हमारे पास नहीं है? शक्के कमर मुआजजा था ना, क्या हमने देखा शक्के कमर को? आप में से किसी ने देखा? बता दें भाई, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा नहीं, ठीक है ना? क्या आपने जो है वो कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए या अल्लाह 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 करते हुए देखा? नहीं, ना मैंने देखा ना आपने देखा, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़े और भी थे बहुत सारे, ठीक, किसी को आपने देखा? ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन कुरान को आपने देखा? हाँ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी देख रहे हैं, ठीक है? तो हमारे हक तलबी के लिए ये मुआवजा काफी नहीं है कि अगर हम इस मुआवजे को पढ़ें और सुनें और समझें और अपने आप को इसकी रोशनी में देखें। जैसे कि अभी इस आयत को कोशिश करी है हमने कि अपने आप को इस आयत की रोशनी में देखें, ठीक है ना? कि हम अहयैनाहू किसको समझते हैं और हम लैस बिखारिज मिन्हा किसको समझते हैं? अपने आप को देखें ना इस आयत की रोशनी में। कुरानी आयत है ना, मौजजे की आयत है ना, राइट? तो क्या हम देख रहे हैं इसको? ठीक है, तो फिर पता चलेगा ना जी कि फिर इस मौजजे से हमें हक मिला कि नहीं मिला, या फिर हम भी वही काफिरों, वही मुशरिकीन मक्का की तरह है ना फिर तो। ये एक कुरान मजीद पढ़े चले आ रहे हैं, पढ़े चले आ रहे हैं, पढ़े चले आ रहे हैं, और हक है कि मिल के नहीं दे रहा, हक समझ में नहीं आकर के दे रहा, ठीक है? कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये हमें समझ में आकर के नहीं दे रहा ना। जैसे कुरान मजीद पढ़ने से पहले थे वैसे ही कुरान मजीद पढ़ने के बाद हैं। भाई हक मिलता तो हम अपने आप को चेंज करते ना, राइट? हम अपने अहवाल को चेंज करते या कम से कम चेंज करने की कोशिश तो शुरू करते ना, चेंज कर नहीं पाते, कमजोर हैं, बहुत मुश्किलात हैं, लोग मुखालिफ हैं, जमाना मुखालिफ है, फलाना मुखालिफ है, ढिमकाना मुखालिफ है, राइट? लेकिन अपने दिमाग में तो हक को हक मानते और बातिल को बातिल मानते और अल्लाह से मदद मांगते कि अल्लाह वाकई मुझे हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए और मुझे इसकी इसके लिए मदद अता फरमा दीजिए बातिल से बचने के लिए मुझे मदद अता फरमा दीजिए, राइट? क्या हमने ये काम किया? अल्लाह से मांगा? अगर नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि हम में और मुशरिकीन मक्का में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? वो भी अल्लाह के मौजूदे के उदय देखते थे, हक नहीं मिलता था उनको क्योंकि उनके अंदर तलब ही नहीं थी, ठीक है ना? देखते थे अब हम तो ये कहते हैं ना जी, अगर मेरे अंदर तलब ना होती तो मैं क्लास क्यों लेती। तो भाई क्लास लेना तलब का जरूरी तो नहीं है। आपका क्या ख्याल है? आप चलते फिरते जो है वो सड़क के ऊपर आपने कोई चीज देख ली, तो इसका मतलब ये था कि आपके अंदर तलब थी, इस वजह से आपने उसको देखा। नहीं, आप गुजर रही थी वहां से, इस वजह से आपने उसको देख लिया, ठीक है। या लोगों ने हाथ पकड़ के आपको लेके चले गए और आपको भी दिखा दी वो चीज, राइट। या कोई और प्रेशर था आपके ऊपर, जिस प्रेशर की वजह से आप जो है वो लोगों के साथ वहां पे पहुंच गई और आपने भी वो चीज देख ली। तो भाई ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये तलब वाली सिचुएशंस तो नहीं है ना, कि प्रेशर में चले गए थे तो इस वजह से देख लिया, या गुजर रहे थे बाय चांस देख लिया, या हाथ पकड़ के कोई लेके चला गया तो इस वजह से देख लिया। तलब तो अलग चीज होती है भाई, तलब तो अलग चीज होती है। तलब तो होती है कि उस चीज को देखने की कोशिश की जाए कि जिसको कुछ समझा समझते हैं, कि जिसको के ना हाँ भाई मुझे उससे वाकई हासिल करना है, मुझे उससे फायदा हासिल करना है, इसको तलब कहते हैं, ठीक है। वो सच है, मेरे पास सच नहीं है, तो मैं वहां से सच हासिल करूं, वो फायदेमंद चीज है, मेरे पास फायदेमंद चीज मौजूद नहीं है, तो मैं उस फायदेमंद चीज के पास जाऊं ताकि मैं वहां से फायदा लेकर के आऊं, इसको तलब कहते हैं। क्या हम कुरान मजीद इस तलब के साथ पढ़ रहे हैं? क्या इस तलब के साथ पढ़ रहे हैं? तो अगर है वो अल्लाह ताला जानता है कि है कि नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। हम तो आपका नाम लेकर के तो नहीं किसी को कह रहे हैं ना, अपने आप को इसके आईने में देखने के लिए। क्या लिखा है उन्होंने, तलब मंजिल की हो सच्ची खुदा फिर राह दिखाएगा। जी, खुदा ही दिखाएगा और कोई नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन खुदा खुद नजर नहीं आता, तो फिर वो तो मारुफुल कुरान को पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। मारुफुल कुरान में खुदा फिर दिखाता है, या किसी लेक्चर के अल्फाज के अंदर फिर खुदा जो है वो उसमें से फिर बात समझाता है, लेकिन तलब वो दिल की देखता है। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इन अल्लाह, हदीस मुबारक वसल्लम, कि इन अल्लाह ला यंजुरु बिसुअरिकुम व अमवालिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, यानी तुम्हारी जो फिजिकल फॉर्म है, वो सिर्फ सूरत से मुराद सिर्फ जो है वो चेहरा नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो फिजिकल फॉर्म है ना, अल्लाह ताला उसको नहीं देखता, और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता कि तुमने कितने तीर मारे हैं और कितना पैसा जमा कर लिया है। वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमालिकुम, तुम्हारे कुलूब को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। सिर्फ कुलूब भी नहीं फरमाया, सिर्फ अमाल भी नहीं फरमाया, क्योंकि कुछ लोगों के कुलूब बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं अपने कुलूब, राइट, कल्बे सलीम के ऊपर मेहनत करी होती है, लेकिन अमाल नहीं कर पा रहे होते, अमाल नहीं कर पा रहे होते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने औलाद दी है, छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने घराना दिया हुआ है जहां पर उनको काम करना पड़ता है, राइट, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं उनके ऊपर, ठीक है, रूहानी औलादें दी हुई हैं, जिस्मानी औलादें दी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो दे आर ऑल द टाइम बिजी, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है मेरी बंदी, काम नहीं कर, आमाल नहीं कर पाती, बहुत मारे बांधे का जल्दी से बस फर्ज नमाज पढ़ लेती है, क्योंकि फर्ज का तो ये नहीं है कि जॉइंट सिस्टम में रहती है तो जी उसके फर्ज माफ है, ये फर्ज तो पड़ती है, लेकिन और कुछ नहीं कर साथ कर पाती है ना, नवाफिल नहीं कर पाती है, ठीक है। लेकिन कल्ब बनाया है उसने, कल्ब कैसे बनाया जी? बगैर अमाल के कल्ब कैसे बनता है? चलिए ये बता दें, अमाल तो करती नहीं है, तो कल्ब कैसे बन गया फिर इसका? कैसे जी, कल्ब कैसे बनता है बगैर अमाल के? फराइज की बात नहीं कर रहे, बगैर फराइज के कल्ब बनता की बात नहीं कर रहे, मतलब फराइज कर लेती है बस किसी तरीके से, तो फिर बगैर अमाल के कैसे कल्ब बन गया? हम तो कहते हैं ना कि अमाल होंगे तो कल्ब बनेगा, वरना नहीं बन सकता, ठीक है। सोच को ठीक रखकर, तलब से। बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए माशाल्लाह, अल्लाह के ध्यान से। अच्छा, सफाई किस चीज से होती है? चले, आपने बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के जवाब दे रहे हैं आप लोग, लेकिन मतलूब जवाब नहीं दे रहे। सफाई किस चीज से होती है? सफाई तो पानी से होती है ना, पानी से। सफाई तो होती है पानी से, तो पानी किधर से निकलता है? आंख से। ठीक है, तो आंख से जो आंसू निकलते हैं ना तौबा के, अल्लाह ताला के सामने, ठीक है, जो कि उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि इसने बड़े बड़े गुनाह किए थे तो इस वजह से तौबा के आंसू निकल रहे, नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हो तभी तौबा के आंसू निकलते हैं। तौबा के आंसू एक अजीब किस्म का पानी होता है, एक अजीब किस्म का पानी होता है। इसमें नदामत भी होती है, लेकिन ये नदामत जो होती है ना, ये मोहब्बत के साथ मिली हुई होती है। ठीक है, ये अजीब किस्म की नदामत होती है, इसमें मोहब्बत शामिल होती है। तो ये आंसू जो होते हैं ना, ये ऐसे आंसू होते हैं कि जिसमें गुनाहों की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि जी गुनाह करेगी तभी आंसू निकलेंगे, वरना नहीं, बगैर गुनाह किए हुए भी आंसू निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक नदामत भी होती है, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है, दो चीजें शामिल होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो फिर कौन सी, अगर गुनाह किए नहीं तो फिर कौन सी नदामत के आंसू, किस चीज की नदामत? मा अबदना का हक्का इबादतिक व मा अरफना का हक्का मारिफतिक, कि ए अल्लाह मैं आपकी इबादत नहीं कर सकी जैसे मुझे करनी चाहिए थी, ए अल्लाह मैं आपका इरफान हासिल नहीं कर सकी जैसा कि मुझे आपकी मार्फत हासिल करनी चाहिए थी। नदामत, ये नदामत ही है ना। ठीक है, तो ये जो आंसू निकलते हैं ना नदामत के, ये असल में नदामत मोहब्बत वाली नदामत होती है, और इन आंसुओं से दिल साफ हो जाता है। ये आंसू इंसान के दिल को साफ कर देते हैं। कोई अमल नहीं किया इसने, राइट, कोई नफले नहीं पढ़ी, कोई लंबी लंबी तिलावतें नहीं करी, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, कोई जो है वो इस किस्म के लंबे चौड़े जो है वो सदके खैरात नहीं किए, कुछ है ही नहीं इसके पास, करेगी कैसे, राइट? इतनी महंगाई है, जरूरतें पूरी नहीं होती, सदका किधर से करेगी? ठीक है, इतने काम हैं, फर्ज ही मुश्किल से अदा करती है तो नवाफिल कैसे करेगी? लेकिन रोती है अपने परवरदिगार के सामने, काम करने के दौरान रोती है। इसके लिए कोई छुट्टी लेने की तो जरूरत नहीं कि छुट्टी मिलेगी तब रोऊंगी अल्लाह के सामने, राइट? भाई अल्लाह के सामने रोना है, कोई दुनिया की सरकार के सामने कोई थोड़ी रोना है, परवरदिगार के सामने रोना है ना। ठीक है, तो ये रोना तो जलवत में बैठ करके होता है, खलवत की जरूरत नहीं होती इसके लिए। खलवत कहते हैं तन्हाई को, और जलवत कहते हैं जब आप सबके साथ मौजूद होते हैं ना, जब दिल अल्लाह के साथ लगा होता है ना, तो जलवत में भी आंसू आते हैं। ठीक है, और ये आंसू जो है ना वो कल्ब को कल्बे सलीम बना देते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला इस कल्बे सलीम को देखते हैं। और फिर आमाल क्यों फरमाया? इसलिए कि जिसको अल्लाह ताला ने फरागत दी है, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, अब वो कहे कि मैं तो बस रोता रहता हूं, ठीक है, तो मैंने रो रो के अपना कल्ब बना लिया है, तो उसको कहा जाएगा कि अल्लाह के बंदे, आपके लिए कल्ब बनाना काफी नहीं था, आपको तो इतना माल दिया था, इतना असबाब दिए थे, इतना वक्त दिया था, इतनी सलाहियतें दी थी, आपको तो अमाल भी करने थे, आपने अमाल क्यों नहीं किए? ठीक है, तो ये कल्ब बनाने वाले भाषण आप नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये तो हम उससे कबूल करेंगे कि जिसको हमने वक्त नहीं दिया था, जिसको हमने माल दौलत की नेमतें नहीं थी, उससे सिर्फ कल्ब ले लेंगे, बस उसका कल्ब काफी है। ठीक है जी, तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? बहर आलम तो ये पढ़ रहे थे कि जी कुरान मजीद का मुआवजा तो हम सबके पास मौजूद है ना, तो अगर हमारे अंदर तलब होगी तो ये मुआवजा क्या हमारे, हमें हक दिखाने के लिए काफी नहीं है? और अगर काफी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का ही के डगर के ऊपर हम भी चल रहे हैं, अगरचे के कुरान पढ़ रहे हैं। भाई वो भी तो पढ़ते थे, ठीक है, वो भी तो सुनते थे। उनके जमाने में लिखा हुआ कुरान मजीद इतना अवेलेबल नहीं होता था, वो तो सहाबा ने, कुछ कुछ ने अपने पास लिखा हुआ था, तो इस वजह से पढ़ने का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो सुनते तो थे ना कुरान मजीद, आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूं, ठीक है। तो सुनना तो कोई तीर मारना ना हुआ ना, अगर तलब के साथ ना सुना, ठीक है, तो वो तलब के साथ नहीं सुनते थे, उनके लिए काफी नहीं होता था। हम भी अगर तलब के साथ नहीं सुनते तो हमारे लिए भी काफी नहीं होगा, ठीक है। मजकूर आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पर ईमान लाने वालों और कुफर और इनकार करने वालों के कुछ हालात और ख्यालात और दोनों के नेक और बद अंजाम का बयान और मोमिनों काफिर और ईमान और कुफर की हकीकत को मिसालों में समझाया गया। इसलिए कि ये अल्फाज होते हैं, जब तक लफ्ज की हकीकत समझ में ना आए तो उस वक्त तक बंदा उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता, ठीक है। अमल करने के लिए तो हकीकत की जरूरत होती है ना, ठीक है। कुफर 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 सुनते तो रहते हैं, हकीकत नहीं पता होती हमें इसकी, जब भी हम अपने कुफर को कुफर नहीं समझ रहे होते। ईमान ईमान ईमान, दीनदार लोग, खुसूसन तबलीगी जमात वाले लोग, बचपन से ईमान की मेहनत, ईमान की मेहनत, ईमान की मेहनत। अगर हकीकत समझ में ना आई तो ईमान की मेहनत करवर कोई नहीं रहे होते, रट रहे होते हैं खाली तोते की तरीके से। अगर ईमान का मतलब ही समझ में नहीं आया कि ये होती क्या चीज है, ठीक है, तो हकीकत असल चीज होती है ना। वो तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ना, वो बांस और गन्ना दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन गन्ने की हकीकत क्या है कि उसमें मिठास होती है, और बांस की हकीकत क्या है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, उसको तो आप दांत से काट भी नहीं सकते, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो हकीकत से फर्क पड़ता है ना, हकीकत सीखने का टाइम नहीं है हमारे पास, उसकी तरफ हमारी कभी तवज्जो नहीं गई, बस रटे रट्टू तोते की तरीके से जो है वो खुद भी बोले चले जा रहे होते हैं, और खुद भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुने चले जा रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं होता ना, इससे फिर फर्क नहीं पड़ता। तो वही फरमा रहे हैं हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैहि, भी वही बात फरमा रहे हैं कि नेक और बद का अंजाम और मोमिनों काफिर और ईमानों कुफर की हकीकत को मिसालों में समझाया गया है। मोमिन और काफिर की मिसाल जिंदा और मुर्दा से, और ईमान और कुफर की मिसाल रोशनी और अंधेरी से दी गई है। ये कुरानी तमसीलात हैं जिनमें कोई शायरी नहीं, एक हकीकत का इजहार है, ठीक है। यानी शायर क्या होता है, वो अल्फाज से खेलता है, ठीक है ना, एक से एक अल्फाज इधर से उधर बोलता है। अल्लाह ताला ये हमें खुश करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, ये अपना कुरान जो है ना, वो तुम जो कर रहे हो तुम उससे खुश रहो, ये इसलिए नहीं कुरान नाजिल हुआ है, ठीक। अल्लाह ताला हमें हकीकत बताने के लिए कुरान मजीद में ये बातें कर रहे होते हैं ना, ताकि हमें खुशी मिले मरने के बाद, वो वाली खुशी मिले, ठीक है। दुनिया में धोखे वाली खुशी नहीं चाहिए, हकीकी खुशी जो मरने के बाद मिलनी है। तो शायरी नहीं है, ये एक हकीकत का इजहार है। मोमिन जिंदा है और काफिर मुर्दा, इस तमसील में मोमिन को जिंदा और काफिर को मुर्दा बताया गया है। वजह यह है कि इंसान और हैवानात और नबातात वगैरह में अगरचे हयात और जिंदगी की किस्में और शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इतनी बात से कोई समझदार इंसान इनकार नहीं कर सकता कि उनमें से हर एक की जिंदगी किसी खास मकसद के लिए है, और कुदरत ने इसमें इस मकसद को हासिल करने की पूरी अहलियत और सलाहियत रखी है। इरशाद कुरानी, आता कुल्ल शैइन खलकहू थुम्मा हदा में इसी का बयान है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने कायनात आलम की हर चीज को पैदा फरमाया, और उसको जिस चीज के लिए पैदा फरमाया था उस तक पहुंचने की उसको पूरी हिदायत दे दी, ठीक है। हर चीज अल्लाह ने पैदा करी और हकीकत तक पहुंचने के लिए पूरी हिदायत अल्लाह ताला ने उसको दे दी। अब हम साइंस पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स हैं जी, ठीक है ना, उसमें जी ये वो इंसानों को भी शामिल कर लेते हैं चलें, और जानवरों को भी शामिल कर लेते हैं और वो प्लांट किंगडम को भी शामिल कर लेते हैं और बाकी चीजों को कहते हैं जी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और हमारा बच्चा वर्ल्ड व्यू यानी वर्ल्ड को वो किस नजर से देखता है, वो नजर उसको कहां से मिलती है, इन साइंस की बुक्स से मिलती है, ठीक है। साइंस की बुक में ये लिखा था साइंसदान साहब ने कि ये लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मुसलमान का बच्चा तो जो बनाने वाले का कुरान जिसको मुसलमान कहता है कि जी ये बनाने वाले तो अल्लाह साहब अल्लाह ताला हैं और कुरान अल्लाह की किताब है, तो वर्ल्ड व्यू के लिए तुम अल्लाह की किताब को क्यों नहीं देखते भाई, अपने बच्चे को अल्लाह की किताब से वर्ल्ड व्यू क्यों नहीं देते। वो तुम्हें खुद नहीं पता कि वर्ल्ड व्यू क्या चीज होती है, और जो है वो कुरान में भी वर्ल्ड व्यू मौजूद है और असल वर्ल्ड व्यू तो वही वर्ल्ड व्यू है जो कि वर्ल्ड को बनाने वाले ने दिया हो, तो तुम्हें खुद नहीं पता, तुमने खुद कभी नहीं सीखा, तो तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। इसी वजह से तुम उसको आउटसोर्स करते हो, जाओ जी तालीम का जेवर वहां से हासिल करके आओ, तालीम का जेवर उधर से हासिल करके आओ, किधर से हासिल करके आओ, उनके बनाए हुए निजाम से, ठीक है। तो जो तालीम अल्लाह ताला का कुरान देता है यानी अल्लाह ताला खुद देता है, वो क्या है कि हर चीज को अल्लाह ने बनाया सुम्मा हदा, ठीक है, उसको नॉन लिविंग थिंग नहीं बनाया, उसको लिविंग थिंग बनाया। तो लिविंग थिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अ लिविंग थिंग, ठीक है। और ये तो अंधे पहले भी नॉन लिविंग थिंग कहते थे और अब जो है ना, जब उनको नजर आ गया कि जो इनकी बताई हुई नॉन लिविंग थिंग्स थी, तो उनके अंदर भी जो है वो जो एटॉमिक सिस्टम क्या होता है कि मुस्तकिल हरकत में होता है, आयंस एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड और भी पता नहीं क्या क्या, उसके अंदर इनको लिविंग यानी लाइफ नजर आ गई है पूरी की पूरी, फिर भी उसको लिविंग थिंग नहीं कहते हैं। अब इतनी लाइफ नजर भी आ गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के जरिए से, फिर भी जो है वो उसको लिविंग थिंग, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने तो लिविंग थिंग बनाया है, सब हर चीज लिविंग थिंग है। तो जिसके मातहत हर मखलूक अपने अपने वजीफे जिंदगी अपनी अपनी ड्यूटी का हक अदा कर रही है। इस आलम में जमीन जो कि इनके हिसाब से नॉन लिविंग थिंग में आती है, पानी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में काफिर के हिसाब से आता है, ठीक है, और हवा और आग। हवा क्या है जिसको कि आप इनकी जुबान से अगर देखें तो वो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो है ना वो इधर से उधर भागना शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं जी ये विंड है, ठीक है। हम कहते हैं नहीं, वो खुद से नहीं भागना शुरू होते, एयर प्रेशर की वजह से नहीं भागना शुरू होते, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते उनको भगा रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू कुरान अजीम शान से मिलता है, ठीक है। और कुरान अजीम शान जो है ना, वल मुरसलात उर्फा वल आसिफात असफा वल नाशिरात नशरा, ये हवाओं के बारे में फरमाता है, ठीक है। तो हम तो अल्लाह ताला के इस मौजे कुरान के साथ ही हमारा मामला है ना कि ये तो हमने साइड की चीज रखी हुई है, कोई रियलिटी से इसका कोई थोड़ी ताल्लुक है। रियलिटी का ताल्लुक जो है, रियलिटी से ताल्लुक जो है ना, वो तो लॉर्ड ब्लैक फेस टाइप के लोगों की लिखी हुई किताबों का ताल्लुक रियलिटी के साथ है। बाकी कुरान का ताल्लुक जो है ना, वो एक सूडो रियलिटी के साथ है जो कि सिर्फ मुसल्ले के अंदर होती है, खाली मस्जिद में होती है, खाली इज्तिमा में होती है, खाली थोड़ी बहुत रमजान के महीने में जरा मस्जिद वगैरह से बाहर भी आ जाती है, थोड़ी सी आ जाती है बाहर मस्जिद से, ठीक है, किचन तक पहुंच जाती है, रमजान के महीने में किचन तक भी पहुंच जाती है वो थोड़ी सी रियलिटी कुरान वाली, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा, उससे ज्यादा उसका ताल्लुक नहीं होता रियलिटी के साथ। बाकी सारी रियलिटी तो साइंसदान बताएगा कि क्या है, या इकोनॉमिस्ट बताएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये तो इस्लाम नहीं है, ये तो अपना बनाया हुआ, लकुम दीनुकुम, ये तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है भाई, नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन तो वली दीन, वो तो नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन ऐसा दीन नहीं है जो कि मुसल्ले तक महदूद हो, या मस्जिद तक महदूद हो, या तबलीगी इज्तिमा तक महदूद हो, या किचन तक, रमजान के महीने में किचन तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा उसको इजाजत नहीं है निकलने की। ये नबी अलैहिस्सलाम वाला दीन नहीं है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जी इस आलम में जमीन, पानी, हवा और आग, इसी तरह आसमानी मखलूकात और चांद, सूरज और कुल सितारे अपनी अपनी ड्यूटी पूरी तरह पहचान कर अपने फराइज अदा कर रहे हैं, ठीक है। और यही अदाए फराइज उनमें से हर चीज की जिंदगी का सबूत है, यानी अल्लाह ने जो उनके जिम्मे लगाए हैं ना, वो उनका फर्ज है। जिस तरह हमारे जिम्मे नमाजें लगाई हैं ना, और हमें जकात और रमजान के रोजे और हज और सच बोलना फर्ज किया अल्लाह ताला ने, ठीक है, बल्कि झूठ ना बोलना फर्ज किया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो उसी तरीके से सूरज के भी फराइज हैं, चांद के लिए भी फराइज हैं, और पानी के लिए भी फराइज हैं, ठीक है। तो वो अपनी अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। तो अगर वो अपने फराइज को अदा करना छोड़ दें, अच्छा, यही अदाए फराइज उनमें से हर चीज की जिंदगी का सबूत है, और जिस वक्त जिस हाल में उनमें से कोई चीज अपनी ड्यूटी अदा करना छोड़ दे, तो वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, ठीक है। तो जिंदगी का ताल्लुक तो भाई अदायगी फराइज के साथ है, अगर अदायगी है फराइज नहीं तो फिर यू आर नॉट लिविंग, यू आर डेड। लेकिन यहां पर वो नॉन लिविंग थिंग वाला साइंटिफिक डेड नहीं, बल्कि रूहानी डेड, ठीक है। तो पानी अगर अपना काम प्यास बुझाना छोड़ बुझा देना और मैल कुचैल दूर करना वगैरह छोड़ दे, तो वो पानी नहीं कहलाएगा ना, ठीक है। यानी पानी की हैयत तब्दील हो जाती है ना, तो फिर अब वो मैल कुचैल दूर नहीं कर सकता, तो अब वो पानी जलाने के काबिल नहीं है, अब आप उसको पानी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। आग जलाना, आग जो है वो जलना और जलाना छोड़ दे, तो वो आग नहीं रहेगी। दरख्त और घास उगना और बढ़ना, फिर फल फूल लाना छोड़ दे, तो वो दरख्त और नबात नहीं रहेगी। नबातात तो कहा ही उसको जाता है, जो कि नबा यंबू, उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, यानी उसमें जब फल आते हैं फिर फूल आते हैं, बल्कि फूल आते हैं फिर फल आते हैं, ठीक है। तो अगर ये काम छोड़ दे तो फिर वो को थोड़ी नबातात कहलाएगी, क्योंकि उसने अपने मकसद जिंदगी को छोड़ दिया, तो वो एक बेजान मुर्दा की तरह हो गई, ठीक है। यानी वो जमादात बन गई ना फिर, सही है। वैनिश तो नहीं हो जाती कोई भी चीज उस दुनिया के अंदर से ना, वैनिश नहीं हो जाती, मादूम नहीं हो जाती, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो नबातात जो हैं वो फॉसिलाइज होकर के फिर वो नबातात नहीं रहते, लेकिन जमादात में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो नबातात नहीं कहलाएंगे बस वो। अब तमाम कायनात का तफसीली जायजा लेने के बाद एक इंसान जिसमें कुछ भी अक्ल व शऊर हो, इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर होगा कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है, और ये कि अगर वो अपने मकसद जिंदगी को पूरा कर रहा है तो वो जिंदा कहलाने का मुस्तहिक, और उसको पूरा नहीं करता तो वो एक मुर्दा लाश से ज्यादा कोई हकीकत नहीं रखता, ठीक है। मुर्दा लाश तो फिर जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं कर सकती ना। अब सोचना यह है कि इंसान का मकसद जिंदगी क्या है और उसके फराइज क्या हैं, ठीक है। यानी मकसद जिंदगी फराइज, फराइज इक्वल्स टू मकसद जिंदगी, तो वो है क्या, और मजकूर सदर उसूल के मुताबिक ये मुतय्यन है कि अगर वो अपने मकसद जिंदगी और ड्यूटी को अदा कर रहा है तो वो जिंदा है, वरना मुर्दा कहलाने का मुस्तहिक है। जिन बेबसीरत लोगों ने इंसान को दुनिया की एक खुर्दो घास, एक खुद रो घास, खूबसूरत उगने वाली घास होती है ना, उस खुद रो घास कहते हैं, जंगली घास। तो जिन बेबसीरत यानी बेवकूफ लोगों ने इंसान को एक रैंडम किस्म की घास की तरह या एक होशियार किस्म का जानवर ज्यादा से ज्यादा करार दिया, चलो जी घास से ज्यादा उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट एनिमल है, और उनके नजदीक एक इंसान और गधे कुत्ते में कोई इम्तियाज नहीं। उन सब का मकसद जिंदगी उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करना, खाना पीना सोना जागना फिर मर जाना ही करार दे लिया है। वो तो अहले अक्ल और शऊर के नजदीक काबिले खिताब नहीं। ठीक है, यानी जिन लोगों ने इंसान और गधे घोड़े और कुत्ते और बिल्ली के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा कि जैसा उनका जो मकसद जिंदगी है वही इंसान का भी मकसद जिंदगी है, तो हम वे यानी उनसे तो फिर हम बात ही नहीं करते ना, यानी क्या उनसे बात करेंगे मतलब। ठीक है, उकला उकलाए दुनिया ख्वा किसी मजहब व मिल्लत और किसी मकतबे ख्याल से ताल्लुक रखते हों, इब्तिदाए आलम से आज तक इंसान के मखदूम कायनात और अफजल मखलूकात होने पर मुत्तफक चले आ रहे हैं कि भाई जो अकल वाले हैं ना थोड़ा भी गौर तो यानी अकल को इस्तेमाल करते हैं तो वो तो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इंसान इनके जैसी चीज नहीं है, ये इनसे अफजल चीज है, कुत्ते बिल्ली से अफजल चीज है। ठीक है, और ये जाहिर है कि अफजल व आला उसी चीज को समझा और कहा जा सकता है जिसका मकसद जिंदगी आला व अफजल होने के एतबार से मुमताज हो। ठीक है, यानी अफजलियत का मेयार तो भाई उसकी मकसद जिंदगी से डिटरमिन होते हैं, जिसका मकसद जिंदगी आला होगा तो वही आला कहलाएगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक कॉमन सेंस कहें, यूनिवर्सल ट्रूथ कहें, यूनिवर्सल लॉजिक कहें, ठीक है, कुल्लिया कहें इसको, ठीक है, कि भाई मकसद जिंदगी से अफजलियत डिटरमिन होगी, वरना तो प्योर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हाथी के पास तो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, अब तक एक सांप के पास जो होती है वो इंसान से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और हर समझबूझ वाला इंसान पहनने में इंसान को दूसरे जानवरों से कोई खास इम्तियाज हासिल नहीं, बल्कि बहुत से जानवर उससे बेहतर और उससे ज्यादा खाते पीते हैं, उससे बेहतर कुदरती लिबास में मलबूस हैं। ठीक है, यानी कुदरती लिबास अगर आप देखें परिंदों के जो पर होते हैं, ठीक है, वो उनका लिबास ही होते हैं ना, आप स्किन कर दे तो फिर वो अंदर से उसका असल बॉडी निकलेगी, स्किन निकलेगी, वरना ऊपर से एमेजॉन रेन फॉरेस्ट की जो बर्ड्स है उनको बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, इतनी खूबसूरत होती है। मछलियों का जो लिबास है, जो जो स्केल्स मछलियों के ऊपर होते हैं, कितने खूबसूरत वो होते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजों के पर वगैरह होते हैं, फेदर्स होते हैं, फेदर्स का तो बात हो चुकी, लेकिन जो फर होता है कितना बेहतरीन जो है वो उनका फर होता है, तो इस लिहाज से तो वो हमसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, से बेहतर हवा व फिजा में रहते बसते हैं, और जहां अपने नफा नुकसान के पहचानने का मामला है उसमें भी हर जानवर और हर दरख्त एक हद तक बाशऊर है, मुफीद चीजों के हासिल करने और मुजर चीजों से बचने की खासी सलाहियत अपने अंदर रखता है। हमारे हजरत एक वाक्य बयान किया करते थे, एक दफा जंगल में से गुजर रहे थे वो सफारी गाइड्स वगैरह के साथ, तो सफारी का जो गाइड था उसने दिखाया कि वो देखे हजरत वो जो एक हाथी है ना वो दरख्त के तने को अपनी सूंड से पकड़ करके ना उखेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा कि हजरत आपके ख्याल में ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा हजरत जी ने कहा कि ये दरख्त को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, ये उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सिर्फ उसको थोड़ा सा अपने जड़ में से निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी जो बीमारी, अच्छा वो बीमार हाथी था लेकिन उसको पता था, यानी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये फितरती इल्म रखा था कि इस दरख्त की जड़ के अंदर ना इसके लिए दवा मौजूद है, और इसको अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेंथ भी दी हुई थी कि ये दरख्त को हल्का सा उखाड़ सकता था अपनी सूंड के जरिए से ताकि ये अपनी दवा तक पहुंच सके। इसको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख करके नहीं दी थी ना, हाथी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाथी ऐसे कोई चीज है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने इसको नफा और नुकसान तक पहुंचने की और उससे बचने की जो है वो सलाहियत दी हुई थी। इसी तरह दूसरों के लिए नफा रसाने के मामले में तो तमाम हैवानात और नबातात का कदम बज़ाहिर इंसान से भी आगे नजर आता है कि उनके गोश्त, खाल, हड्डी, पट्ठे और दरख्तों की जड़, अभी दरख्तों की जड़ की बात करी तो हजरत में लिखा हुआ, दरख्तों की जड़ से लेकर शाखों और पत्तों तक हर चीज मखलूक के लिए कार आमद और उनकी जरूरियात जिंदगी पैदा करने में बेशुमार और फवाइद की हामिल है, बखिलाफ इंसान के ना इसका गोश्त किसी के काम आता है, ना खाल, ना बाल, ना हड्डी, ना पट्ठे। ठीक है, यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका कोई जानने वाला जो है वो बीमार पड़ गया तो आपने अपनी खाल का कुछ टुकड़ा काट करके उसको दे दिया कि हाँ भाई ये आपकी दवा है, इस दवा इसको घोल करके आप जो है ना वो इसका जोशांदा पी लिएगा तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। गोश्त का कोई निकाल करके आपने उसको दे दिया कि इसको आप इस तरीके से खा लिएगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप तो किसी काम के नहीं है, सही है। दरख्त, जानवर, पत्ते, इनके तो लोगों को फायदे होते हैं, आपसे तो किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा आपके जिस्म से। ठीक है, अब देखना ये है, अब कोई कहेगा नहीं, किडनी किडनी ट्रांसप्लांट तो करते हैं ना तो फायदा हो जाता है, तो वह एक किडनी है जिसका क्या आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, वो भी आप जाकर के कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका भी फिर यह है कि भाई इजाजत भी नहीं है इसकी शरीयत के अंदर, तो कम से कम शरीयत में तो इजाजत नहीं है, बाकी काफरों के तो नजदीक तो है भी नहीं कोई मसला, वो तो बंदे को मार कर उसका गोश्त काट कर किसी को खिला दें तो भाई उनका क्या है। तो अब देखना यह है कि इन हालात में फिर हजरत इंसान किस बिना पर मखदूम कायनात और अफजल मखलूक ठहरते हैं। अब हकीकत शनासी की मंजिल करीब आ पहुंची, यानी अब हम हकीकत के करीब पहुंच रहे हैं कि आपके जो उकला है ना वो इंसान को अगर अफजल मखलूकात कहते हैं, बेवकूफों की तो हम बात ही नहीं करते ना, जो कि कुत्ते बिल्ली और इंसान में कोई फर्क नहीं करते, हम तो इनके अकलमंदों की बात कर रहे हैं, किनके, काफिरों में जो अकलमंद कहलाते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, तो वो कहते हैं ये अफजल मखलूकात है इंसान। तो फिर कैसे अफजल मखलूकात है, किस बुनियाद पर अफजल मखलूकात है, वो तो किसी काम की नहीं है, तो फिर अफजल मखलूकात कैसे हो गई। तो अब यहां तक पहुंच गए तो जरा सा गौर करें तो मालूम होगा कि इन सारी चीजों के अक्लो शुरूर के रसाई सिर्फ मौजूदा जिंदगी के वक्ती और हंगामी नफा नुकसान तक है, और इसी जिंदगी में वो दूसरों के लिए फायदा बख्श नजर आती है, यानी दरख्तों, पत्तों और पत्थरों और पानी, इनमें जो दूसरों के लिए नफा बख्श चीज मौजूद है वो सिर्फ इसी जिंदगी तक है। इस दुनिया की जिंदगी से पहले क्या था और बाद में क्या आने वाला है, उस मैदान में जमादात नबातात तो किसी बड़े से बड़े होशियार जानवर की अक्लो शऊर भी काम नहीं देती, और ना उस मैदान में उनमें से कोई चीज किसी के लिए कार आमद या मुफीद हो सकती है, यानी दुनिया में आने से पहले कोई जो है वो दुनिया का फल खा रहा हो, नहीं, दुनिया से जाने के बाद कोई यहां के फलों और सब्जियों से फायदा उठा रहा हो, नहीं। ठीक है, तो बस ये दुनिया की जिंदगी इसी में बस ये नबातात और हैवानात और जमादात का फायदा है, ना पहले फायदा था ना बाद में फायदा है, बस यही वो मैदान है जिसमें मखदूम कायनात और अफजल मखलूकात इंसान को काम करना है, और इसी से उसका इम्तियाज दूसरी मखलूकात से वाजह हो सकता है। ठीक है, तो इंसान साहब जो अपने आप को अफजल मखलूकात समझ रहे हैं ना, तो क्यों भाई वो दुनिया में आने से पहले की जिंदगी और दुनिया में से जाने के बाद वाली जिंदगी, ठीक है, उसका फायदा है इंसान के पास। ठीक है, मालूम हुआ कि इंसान का मकसद जिंदगी पूरे आलम की इब्तिदा व इंतहा को सामने रख कर सबके नतायज और अवाकिब पर नजर डालना और ये मुतय्यन करना कि मजमूई एतबार से क्या चीज नफे और मुफीद है और कौन सी चीज मुजिर और तकलीफ देह है, फिर इस बसीरत के साथ खुद अपने लिए भी मुफीद चीजों को हासिल करना और मुजिर चीजों से बचना और दूसरों को भी इन मुफीद चीजों की तरफ दावत देना और बुरी चीजों से बचाने का एहतमाम करना है, ताकि दाइमी राहत सुकून और इत्मीनान की जिंदगी हासिल हो सके। और जब इंसान का मकसद जिंदगी और कमाल इंसानी का ये मेयारी फायदा खुद हासिल करना और दूसरों को पहुंचाना है, तो अब कुरान की यह तमसील हकीकत बनकर सामने आ जाती है कि जिंदा सिर्फ वो शख्स है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आलम की इब्तिदा व इंतहा और इसमें मजमू एतबार से नफा व नुकसान को वही इलाही की रोशनी में पहचाने, क्योंकि निरी अकल इंसानी ने न कभी इस मैदान को सर किया है न कर सकती है। बड़े बड़े उकला व हुकमा और फिलसुफान आलम यानी फिलोसोफर्स ने अंजाम कार इसी का इकरार किया है। ठीक है, ये बड़ा लंबा सा एक पैराग्राफ हमने पढ़ दिया और मुश्किल लैंग्वेज भी थी, हो सकता है आप में से अक्सर इसको फॉलो ना भी कर पाई हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की खातिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म भी करनी है कि प्रूफ के क्या किया है। ये जो अकली एक बात करी है ना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने, तो प्रूफ क्या किया है कि ये जो इतनी फायदेमंद चीजें हमें नजर आती हैं ना, हैवानात नबातात और जमादात की शक्ल में, इनका फायदा तो महदूद है सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी के लिए। ठीक है, तो फिर इंसान तो इस दुनिया की जिंदगी में फायदे वाला नजर नहीं आता, तो फिर इंसान को अफजल मखलूकात क्यों कहा है? तो उसके लिए इंसान को चाहिए कि वो दुनिया की जिंदगी से बाहर अपनी नजर डाले। ठीक है, कि बाहर जो है ना, वो फिर क्या वो चीज है, क्या वो वजह है कि जिसकी वजह से मुझे अफजल मखलूकात कहा गया, इंसान को अफजल मखलूकात कहा गया। तो बाहर जब वो नजर डालेगा तो अब उसको नजर तो नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है ना, अब हम यहां पे रहते, हम यहां से बाहर नजर डाल ही नहीं सकते। बाहर से मुराद कि कब्र में क्या हो रहा है, ठीक है, आखिरत में क्या हो रहा है या क्या होगा, हम उधर नजर नहीं डाल सकते। ठीक है, आने से पहले क्या हो रहा था, हम उधर भी नजर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फिर हम अफजल मखलूकात फिर कैसे बनेंगे जब हम देख ही नहीं सकते उधर क्या और इधर क्या, बस सिर्फ जहां पर हैं वहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर तो हमारा कोई फायदा ही नजर नहीं आता। सारे फायदे तो हम दूसरों से हासिल कर रहे हैं, पौधों से और जानवरों से और जमादात से, तो फिर हमारा क्या फायदा है? तो उसके लिए फिर उस शख्स के पास जाना होगा कि जिसको के अल्लाह ताला ने यानी सब कुछ बनाने वाले ने पीछे का भी इल्म दिया आगे का भी इल्म दिया। ठीक है, तो उसको सुनना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा और उससे जो है वो हिदायत हासिल करनी पड़ेगी। इसी को ही मानना ना कहते हैं, इसी को ही मानना ना कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी तफसीर फिर हजरत ने जो बांधी है ना, वो दरअसल इसी ही वजह से बांधी है। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आगे पढ़ेंगे, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो चैट विंडो पर लिख करके पूछ सकते हैं। We are made and sent for amar bil maruf and nahi anil munkar. We have to do it. Yes, we have to do it. Please guide me. Guide you in what? इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे? इन्होंने क्या लिखा? तो पहले जो आपने लिखा था उस सिलसिले में गाइडेंस चाहिए। द तबलीगीज आर सेक्रीफाइसिंग देयर होम्स जॉब्स एंड लाइव्स चिल्ड्रन वाइव्स फॉर दीन दे टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ ईमान स्पेशली इन पुअर प्लेसेस लाइक रीजन एंड अफ्रीका। सो तबलीगीज किस चीज को कहते हैं? जिसने ईमान की हकीकत को समझा, ठीक है, तो वो तो बात करता है भाई। जो हकीकत को समझता है तो वो बात, वो काम करता है। ठीक है, तो फिर मसला क्या है इसके अंदर? सूफी साहब जो है ना, सूफी साहब समझ रही हम तबलीगियों के खिलाफ है? नहीं, सूफी साहब जो कि अल्लाह अल्लाह तो करते हैं लेकिन अल्लाह को समझते नहीं है कुछ, तो वो भी है ऐसे ही है। ठीक है, उनको भी कोई फायदा नहीं होगा। जो आलिम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, वो भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं लेकिन हकीकत से ईमान की हकीकत नहीं उनको समझ में आ रही, वो भी अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट तबलीगी और मौलवी और सूफी और एनीथिंग, इट्स अबाउट हकीकत। ठीक है, तो जिसने हकीकत को समझा ना फिर वो असल काम करता है, और जिसने हकीकत को नहीं समझा वो गोइंग विद द फ्लो, वो भेड़ चाल चल रहा होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी मकतबे फिक्र से हो, वो भेड़ चाल चल रहा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, असल चीज तो हकीकत होती है। ठीक है, चले अलहमदुल्ला, ठीक है, अब हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।